Yan Pranabo, Yan Malik Jagatmo, Yan Zarurat Ke Zahid Saman. Ayat Aysan Salman, Jiski Mujiyat Me Sare Baran Tola Chandi Ki Maliyat Ke Barabar, Ya Kutri Chandi Ho, Yan Pranabo, Yan Malik Jagat Ho, Yan Zarurat Ke Zahid Saman Ho, Yan Nafad Raman Ho. ऐसा सब साहिब निशाब से लाता है। ऐसे सब को समझने की बहुत जरूरत है। ये एक हदबंदी है सूफी इस्लाम में, शरीय इस्लाम में, कि मालदार कौन है, गरीब कौन है। ये कि जगात जो है अल्लाह ताला ने मालदारों को फर्ज की है और गरीबों को देने के लिए फर्ज की है, तो कोई ना कोई इसकी लिमिट होनी चाहिए, जो हद होनी चाहिए। तो जो निशाब है ये हद है, तो इस हद पर जो वक्त आ जाएगा वो सिर्फ इस्लाम में, शरीय इस्लाम में हली कहलाएगा, मालदार कहलाएगा, और उसको हम कायदे निकाह भी कहते हैं। और जो शख्स इस हद से नीचे है वो सिर्फ इस्लाम में, शरीय इस्लाम में मालदार नहीं है, वो गरीब है और वो कायदे निकाह नहीं है। तो इस निकाह तो ये हो गया सारे बावन तोला चांदी या उसके मर्जत के बराबर नकद रकम या सोना या चांदी या मालिक इजारत या जबरदस्त जायज सामान। दूसरी चीज जो समझने की है वो ये है कि साल का गुजरना, बहुत जंगलों के अंदर ये बात होती है कि भाई हमारे पास पैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर माल पर तो साल गुजरता नहीं, तो हम बताते किस तरह जाते हैं। व्यापार का पूछते हैं कि भाई इतना पैसा आया, जिस प्रकार से गुजरा नहीं, क्या उसको बता बता करें या ना करें। तो ये बात याद रखिए कि साल के गुजरने से मराज ये है कि जब कोई शख्स पहली दफा साहिब निशाब हुआ, साहिब निशाब की तारीख मैंने आपके सामने कर दी, कि जब तक पहली दफा साहिब निशाब हुआ तो उस दिन को याद रखिए। और वो दिन हमें याद रखिए 15 तारीख से, कि उस दिन चांद की क्या तारीख थी, तो उस तारीख को वो गनी हो गया, साहिब निशाब हो गया, वो मालदारों की सब में शामिल हो गया। जब मालदारों की सब में शामिल हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म लाजिम हो गया उसके ऊपर जो वो जकात अदा करे। जिस तरह के इनकम टैक्स है इसकी जो हद होती है, तो इसमें इतने रकम किसी के पास है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स है, उससे कम अगर हो तो इनकम टैक्स नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है तो इतने रकम किसी के पास आ जाए तो वो उससे जकात है, और उससे कम हो तो जकात नहीं। तो जब पहली दफा आदमी साहिब निशाब हुआ और सूफी इस्लाम है वो मालदारों की सब में शामिल हो गया, तो उसके ऊपर जकात का हुक्म आ गया। लेकिन शरीयत ने आसानी दी तो उसको एक साल के लिए मोहलत दे दी, मोहलत दे उसको एक साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया कि अभी तुम्हारा जकात है, तुम्हारे जिम्मे नहीं है, बल्कि इस तारीख को याद रखो, जब ये पूरा 25 साल गुजर जाए और तुम्हारा वही तारीख है और उस वक्त भी आप मालदार हैं, शरीर चला से सुगम से अगर आप मालदार हैं, तो घर ऐसे अब आपके जिम्मे जकात की अदायगी लाजिम है। तो साल गुजरने से बड़ा यह है कि पहली दफा आपने जब साल का निकाल हो और उसकी 25 तारीख मालूम है, तो उस 25 तारीख के बाद जो आइंदा साल जब आ जाए तो उस 25 तारीख को याद रखें कि अब जो उसकी 25 तारीख उसके जकात का हिसाब करने के लिए मुतय्यन हो गई। अब अगर वो मालदार रहता है, अल्लाह ताला उसको फर्ज का फरमाते हैं और उसके अंदर माल के अंदर रोज रोज तरक्की होती रहती है, तो उसकी जकात की तारीख यही मुतय्यन रहेगी उम्र भर, इसमें कोई कमी रहनी तब्दीली नहीं होगी। और इस तारीख दी के जवाब से उसकी जकात का हिसाब लगेगा। तो लिहाजा इस तारीख की बड़ी अहमियत है, इस तारीख को याद रखना चाहिए। और अगर किसी शख्स को यह तारीख याद नहीं है, जो किसी ने उसको मुतवज्जा किया है, यकीन किया हुआ है, कभी कोई तारीख कभी कोई तारीख, तो उससे उसकी जकात का हिसाब सही नहीं लगेगा। इसलिए ये माल आने जाने वाली चीज है, एक दिन माल होता है दूसरे दिन माल नहीं होता, तो ये कभी कि जिस दिन माल नहीं है उस दिन बैठ कर भी चला जकात का हिसाब कर लेते हैं। तो इसके एक तारीख मुतय्यन होनी चाहिए, तो या तो जिसको हकीकी तारीख याद है उसको रखे उसका, और काफी तारीख रखना ज्यादा अहम है। और अगर किसी को याद नहीं है तो फिर एक तारीख तय कर ले 25 तारीख, और वो उसकी जिंदगी भर के लिए रहेगी अगर अल्लाह ताला उसको मालदार रखें। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको फायदे करने पर रखे, ईमानदार रखे, ताकि वो गरीबों पर तकसीम करें। तो उसकी वो तारीफ तय हो जाएगी। जब ये तारीफ तय हो गई, इस तारीफ को वो अपनी जकात एजेंट माल की तारीफ बनाए। अब किन किन माल के ऊपर जकात है उनको उसको समझने की जरूरत है। माल जकात का है वो उम्र 5% के माल पर है, सोने पर चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चांदी पर चाहे वो किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, और नकद रकम पर जो करेंसी चलाती है और करेंसी की जितनी भी उड़ते हैं सर्टिफिकेट की सूरत हो, बैंक में हो और या बैंक की करेंसी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, डिस्काउंट करेंसी चले, और माले तजारत पर और साइमा जानवर पर, चलने वाले जानवरों पर, ये 5 अमवाल जो है जकात के अमवाल हैं। तो जानवरों की जो जकात है उसकी अलग तस्वीर है और वो उम्र शहरों के अंदर लागू नहीं होती, इसलिए शहर में रहने वाले जानवर वगैरह पालते नहीं, इसलिए उसके मुताबिक कभी हम बात नहीं करेंगे, न इस फार्म के अंदर बात की गई है जानवरों के मुताबिक, इसलिए कि ये शहर के लोगों को समझाने के लिए इस फार्म बनाया गया है। तो गया कि अब हमारे सामने काबिल जकात माल, जकात का दिल माल जिसके ऊपर जकात लागू हो सकती है, वो क्या है? सोना, चांदी, नकद रकम और माले तिजारत। तो ये 4 चीजें हैं। अब जो जकात की तारीख आपने तय की हुई है, उस तारीख को आप देखें कि आपकी मिल्कियत में उस दिन कितना माल है, इन 4 चीजों में से कितना सोना है उसको सबको जोड़ लें, उसकी मालियत लगा कर लिख लें, कितनी चांदी है आपकी मिल्कियत में उस सबको जोड़ लें, उसकी मालियत लिख लें, नकद रकम की जितनी मुख्तलिफ सूरतें हैं, नकद रकम है, रुपए हैं या डॉलर है या किसी भी करेंसी है और या सर्टिफिकेट की सूरत में है, प्राइस बॉन्ड की सूरत में है, करेंट सर्टिफिकेट की सूरत में है, किसी भी सूरत में है उसको लिख कर रख लें कितने हैं। इसी तरह किसी को उधार की भी रकम है, जो रकम उधार दे दी गई है वो भी आपकी मिल्कियत है। अगर उस तारीख को आपकी आपकी मिल्कियत में कितनी रकम किसी के दिन में दी है उसके दिन में देनी है तो वो भी आप लिखते हैं। मतलब कि उस कर्ज का जिसने कर्ज लिया है वो आदमी करार करता है कि हाँ मैं आपका मकरूज हूँ, आपको पैसे अदा करूंगा, और क्या आपने माल खर्च किया हुआ है और उसकी रकम आनी है, तो जो माल उसका मालिक तजारत था आपने खर्च कर दिया उधार पर और उसकी रकम आनी है जिसको ऋषि अजीब कहते हैं, तो ऋषि अजीब जो रकम है वो भी आपकी मिल्कियत मिलाई है, उसको भी आप करार करेंगे जकात तहसीस करने में और उसके हिसाब करने में। तो सारी तस्वीर भी अंदर है। इसी तरह जो रकम आज लोग किसी मकसद के लिए जमा करके रखते हैं, मसलन हज के लिए फार्म भरा हुआ है, अब हज के लिए रकम देगी 17,000 मसलन आजकल के हिसाब से, और जकात आपको करेंगे आज या मसलन रखें रमजान को, तो आज की रकम जो 17,000 रुपये है अभी वो खर्च नहीं हुई है, खर्च जब होगी जब आप हज कर लेंगे या हज के लिए रवाना हो जाएंगे, अभी तो आपकी रकम बैंक में मौजूद है, उनके पास अमानत है, अगर खुदाना खान से किसी का इरादा करेगा हज पर जाने का तो रकम वापस ले सकता है, या अगर उसका इंतकाल हो गया तो रकम वापस मिल जाएगी और उसकी कर्जा में शामिल होगी, तो लिहाजा ये रकम जब तक के सर्च नहीं की गई उसकी मिलियत है, तो लिहाजा उसको भी जकात के हिसाब से समान करेगा। ये भी सोचे करें ये रकम तो हमने हज के लिए रखी हुई है, इसको हम जकात के हिसाब में समान नहीं करेंगे, या किसी और उनके मकसद के लिए रखी हुई है, बेटियों की बेटों की शादी के लिए रखी हुई है वो भी आपकी मिलियत है, उसको भी आप जकात के हिसाब में समान करेंगे। इस तरह रकम की जितनी सूरतें किसी को कर्ज दी हुई है या अमानत के तौर पर रखी हुई है, उसकी मकसद के लिए रखी हुई है, जब तक आपकी मिलियत है उसको आप उस तारीख में हिसाब करें और उसका हिसाब जोड़ें। इसी तरह माले तजारत, माले तजारत हर वो माल कहलाता है कि जो खरीद फरोख करने की नियत से खरीदा गया, चाहे आदमी आम इतला के तबाद से ताजिर न हो, जिसकी कोई दुकान नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, आम आदमी मुलाजिम है और मुलाजिम अलग चलाते हैं, ताजिर अलग चलाते हैं उसके आम में, लेकिन एक मुलाजिम आदमी है उसने कोई सलाद खरीद लिया कि भी चलो मैं उसको बेच दूंगा, तो ये जो सलाद है उसके पास माले की जाते हैं, ये भी जो माले ज्यादा सिर्फ ताजिर के पास होगा जिसका मोटे आम में ताजिर करते हैं। तो माले ज्यादा सवाल क्या है, हर वो माल जिसको फरोख करने की नियत से खरीदा है, चाहे वो आम आदमी ने खरीदा हो या उसके आम का ताजिर है उसने खरीदा है, चाहे प्लाट खरीदा हो, दुकान खरीदी हो, छोटा सामान खरीदा हो, बड़ा सामान खरीदा हो, ये सब माले तजारत है। उस मालिक इजाजत की जो उस दिन उस तारीख को जिस दिन आप जकात का हिसाब कर रहे हैं, जो आपकी जकात की तारीख बताई है, उस दिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के तरह आप उस कीमत पूछी है, यह है मालिक इजाजत। इसी तरह मालिक इजाजत किसी को दिया और उसके बदले में कोई दूसरा सामान ले लिया, कैसे नहीं लिए तो दूसरा सामान है वो भी कुछ ना कुछ मालिक इजाजत बन जाएगा, क्योंकि मालिक इजाजत का एवज भी मालिक इजाजत होता है, तो उसको भी आप जकात के हिसाब कर रहे हैं, अपने अपने सामने रखेंगे और उसकी वैल्यू लगाएंगे। इस तरह ये चार चीजें हो गई, जिन तमाम चार चीजों की जितनी भी सूरतें बनती हैं उन सबकी मालियत का आप लगाते जाए हिसाब और उसको जमा कर लें। तो उसका मसला हमने फार्म में लिखा है कि उसको मजमुआ काबिले जकात माल, जितना माल होता है इसका मजमुआ काबिले जकात माल हो गया। इसमें मुख्य चीजें लिखी है, मतलब इंश्योरेंस वगैरह का भी लिखा है। तो देखिए इंश्योरेंस कराना हमारे जो मामूल में राइट है, तो वो राइट इंश्योरेंस से नजायज है, चाहे वो जिंदगी का बीमा हो या गुस्त का हो, किसी भी चीज का हो, वो तो है नजायज। लेकिन इंश्योरेंस में जितनी रकम जमा कराती है प्रीमियम ये जो है वो आपका मान है, उसको भी आप सरकार के हिसाब में समाप्त करेंगे। इसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो नजायज है उसमें लिखी नहीं है, मसला एनडीएस के सर्टिफिकेट है, तो ये रखना नजायज है, इसके ऊपर जो आमदनी मिलती है वो हराम है। लेकिन अगर किसी ने एनडीएस के सर्टिफिकेट रखे है तो उसका माल है, इसके ऊपर उसकी असल वैल्यू पर जकात आएगी। जो इजाफा मिलता है इजाफा तो लेना ही नहीं चाहिए, जकात देने की बात नहीं है, उसको तो वसूल ही नहीं करना चाहिए, जो अपनी असल वैल्यू है उसके ऊपर जकात है, उसको हिसाब करेंगे। इस तरह और बहुत कुछ पूछते हैं, तो ये सब जकात में जमा शुमार कर ली। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि आदमी खुद भी मकलूब होता है कुछ ना कुछ, तो हमारी जिम्मेदारियां जो लाइब्रेटीज हैं उन लाइब्रेटीज को इसमें से निर्मा करना है। हमारी जिम्मेदारियां कौन कौन सी है लाइब्रेटीज, एक तो यह है किसी में उधार की भी रकम है, खुद भी ताजी ने माता जी का कहा सर्वर है, लेकिन यह जो उधार का चलता रहता है उधार की भी रकम है जो उसको अदा करनी है, तो उसके ऊपर इसके कितनी रकम मुझे अदा करनी है। इसी तरह उधार माल लिया था, दुकान में उधार माल खड़ा हुआ है, तो माल जो ले लिया वो तो उसकी मिलकियत हो गया, उसको तो वो मालिक जायत में इस्तेमाल करके उसकी जो उस दिन की मार्केट वैल्यू है उसकी यहाँ से कीमत लगा दे। लेकिन कितने का लिया था, कितने जिम्मे का भी उसके जिम्मे आया हुआ है, इन माई फैली है वो उसके जिम्मे खर्च है, उसको हमारी जिम्मेदारी में लिखे और उसको कोई देना करेगा। इसी तरह मुलाजमीन की तरफा है, उसका शोरूम है या बड़ी बड़ी सरकार में फैक्ट्री है स्टोर है, तो उसके अंदर मुलाजिम रखे हुए हैं, उन मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है, तो उन मुलाजमीन की चाहे दुकान के हों घर के हों जाती मुलाजिम हों कैसे भी मुलाजिम हों जिसकी तनख्वाह इसके जिम्मे आ रही है, उन मुलाजमीन की तनख्वाह भी लाइब्रेटीज में जमा होगी। लेकिन कौन सी तनख्वाह जो इन तारीख तक उसके जिम्मे आ गई, जो भी जो पहले से बजट बना हुआ पूरे साल का, जैसे इस साल में इतनी कम रकम मुझे तनख्वाह की अदाई के लिए रखनी है, कितनी रकम बिजली के बिलों के लिए रखनी है, कितनी रकम टैक्स के लिए रखनी है, वो तो आइंदा आने वाले हैं, आइंदा आने वाले को इसमें साथ नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी तारीख तय हो चुकी है उस तारीख को देखिए कि कितने बिल आपके जिम्मे आ चुके हैं, मुलाजमन की तनख्वाह बिजली का बिल गैस का बिल और पानी का बिल टैक्स के बिल और मुख्तलिफ जितने मतदाप आपने खर्च करते रहते हैं उन सबको आप जमा करें, उन सबको जमा करके उसको एक तरफ जमा कर लें, उसको मतलब मजमे मजमुआ माली जिम्मेदारियां, तब बहुत चीजें आज आपके सामने आ रही है। यह मजमुआ काबिल जकात माल, तो जितना आपके पास मिल्कियत में काबिल जकात माल था उसको आपने एक तरफ कर लिया, और कितनी इस तारीख को आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ड्यूज हैं डेस्ट हैं उन सबको आपने एक तरफ जमा कर लिया, तो जितनी माली जिम्मेदारियां हैं लाइब्रेटीज है उन सबको आप जमा करें माइनस करें मजमुआ काबिल जकात माल में करें। मेहनत करने के बाद निर्मा करने के बाद जो जवाब आता है उस जवाब को देखें, वो जवाब अगर साढ़े बारह तेरह गांधी की मालियत के बराबर जब की जाहिर है, यानी निशाब के बराबर है या निशाब की जाहिर है, तो अब आपके जिम्मे जवाब है। और अगर नाते जिम्मेदारियां इतनी हैं कि जितना आपकी तरफ एक तरफ माल था काबिल जकात माल उससे ज्यादा आप मकरूज हैं, तो वो काबिल जकात माल नीचे हो गया और अर्ज की रकम ज्यादा हो गई तो आपके जिम्मे जकात नहीं होगी। लेकिन अगर मजमुआ काबिल जकात माल ज्यादा है और माली जिम्मेदारियां कम है और माली जिम्मेदारियों को निर्मा करने के बाद भी आपके पास निशाब के बराबर माल बचता है, तो इस जितना माल बचा इसके ऊपर घटा है और वह है 22%। तो उसको यहाँ पर लिखा है कि उस सब को आप जो है 40 से डिवाइड कर दें, 40 से सब कर देंगे तो 22% बन जाएगा, और जितना जितनी रकम बने वो आप उस सही शख्स को जकात की नियत से दे दें। तो ये तो हो गया जकात का हिसाब करना। दूसरी चीज क्या है, जकात की अदायगी, कि अदायगी किस तरह होगी। जकात की अदायगी के लिए दो चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज है नियत, कि जकात जब भी अदा करें आप नियत करके अदा करें। अगर बगैर नियत के कोई शख्स माल किसी को दे देता है तो वो सत्ता को बजाएगा, लेकिन उसके दिन में जो जकात की अदायगी थी वो अदा नहीं होगी। तो जकात की नियत से जकात दें, लेकिन जबान से कहना जरूरी नहीं है। जिस शख्स को जकात दे रहे हैं उसको बतलाना जरूरी नहीं कि मैं आपको जकात दे रहा हूँ, बल्कि उसको आप हत्या का अनुमान भी दे सकते हैं, करप का अनुमान भी दे सकते हैं, चुपचाप भी रह सकते हैं। जो भी आप जकात की नियत करें कि मैं जकात की मत भी दे रहा हूँ, तो एक तरह नियत, और दूसरा क्या है कि मुस्तहिक शख्स को, पर्सन को मालिक बनाना। जो मुस्तहिक अशखास हैं, अफराद हैं, उनको मालिक बनाना। तो तमलीक जरूरी है, किसी शख्स को मालिक बनाए बगैर जकात अदानी होगी। तो लिहाजा जहाँ तमलीक की सूरत नहीं पाई जाएगी, मालिक बनाने की सूरत नहीं पाई जाएगी, वहाँ जकात की अदानी होगी। मतलब किसी शख्स किसी इदारे को देगी, तो इदारा जो है वो फर्ज नहीं है, इदारा मालिक नहीं बन सकता। मस्जिद को देगी, मस्जिद जो है वो कोई फर्ज नहीं है, लिहाजा मस्जिद को जकात अदानी होगी। किसी अस्पताल को देगी, अस्पताल की तामीर में खर्च हो जाए या उसके लिए साधन सामान आ जाए, इक्विपमेंट आ जाए उसके लिए, तो उसके ऊपर जकात नहीं रख सकती। इसी तरह से जिसका इंतकाल हो गया है, अब उसके कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, उसके कफन दफन के लिए जकात देगी। तो अब जिसे आप जकात दे रहे हैं उस मैयत को, और मैयत अमानत नहीं बन सकती, तो लिहाजा जकात अदा नहीं होगी। तो इस मुद्दे को समझना जरूरी है कि जकात मुस्तहिक शख्स को मालिक बनाकर दी जाए। तो ये जकात की अदायगी के लिए दो चीजें जरूरी है, एक नियत और एक मुस्तहिक शख्स को मालिक बनाना। मुस्तहिक शख्स कौन है? मुस्तहिक शख्स हर वो मुसलमान है कि जो हाशमी न हो। हाशमी को कहते हैं कि जो हजरत अब्बास और हजरत अली, हजरत जाफर और हजरत अकील और एक हरत हारिस के लिए, ये पांच अपराध हैं। हरत अब्बास, हरत हारिस के लिए, अब्बास के लिए मुख्तलिफ, हरत हारिस के लिए मुख्तलिफ, और अबू तालिब के तीन बेटे हरत अली रजील्ला तला हूँ, हरत अकील और हरत जाफर तैयार रजील्ला तला हूँ। इन पांच बेटों की जो अपराध है ये हाशमी के जाती है। तो इनका इकराम है, इनको अल्लाह ताला ने उनका मर्तबा अदा फरमाया है, तो इन हजरात को जकात नहीं दी जा सकती। तो मुसलमान हो और हाशमी न हो, और दूसरा ये कि वो मालदार ना हो। इसलिए कि मालदार को जकात दे रहा है, तो मालदार किस तरह जकात दे सकता है? तो मुसलमान हो, हाशमी न हो और मालदार ना हो। और मालदार किसे जाएंगे? मैंने खुदा ने बताया कि मालदार वो शख्स है कि जिसकी मिल्कियत में 52.5 लाख चांदी के बारियत के बराबर नकद रकम हो, या सोना हो, या चांदी हो, या माले तजारत हो, या जरूरत जायज सामान हो, वो मालदार है। तो एक शख्स है, उसके पास न सोना है, न चांदी है, न माले तजारत है, न नकद रकम है, लेकिन घर में जरूरत जायज सामान काफी तादाद में मौजूद है, और उसकी मालियत जो है 52.5 लाख चांदी के बराबर बन जाती है। तो उसके दिन में जकात नहीं है। इसलिए जकात से क्या चीजें करें, उसके दिन में जकात नहीं है, लेकिन वह जकात लेने का मुस्तहिक नहीं है। तो जकात के इस्तेहकाम को समझने के लिए पांच चीजें रखनी होंगी, नकद रकम, सोना, चांदी, माले तजारत और जरूर से जायज सामान। इन पांच चीजों को हम एक्सपेक्ट करने देखेंगे, इन पांच चीजें मजबूत तौर पर इंतजारी तौर पर उसके पास है या नहीं, 52.5 लाख चांदी की मालियत के बराबर। अगर उसके पास है तो फिर वो मुस्तहिक की शक में शामिल नहीं है, वो आशुदा माल है, शरीयत ने उसको गरीब भी करार दिया, तो लिहाजा वो जकात नहीं दे सकता। इसलिए इसके ना तो मेहनत से होनी चाहिए, जकात ऐसे दिन हर एक उड़ा दी जाए, गरीबों का हक है, तो लिहाजा उसका कोई हदबंदी करनी चाहिए। तो हदबंदी यह है कि जिसकी मिल्कियत में 52.5 लाख चांदी की मालियत के बराबर कुछ पांच चीजें नकली तौर पर थोड़ा थोड़ा है, मतलब कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ माले तजारत है, कुछ राइट सामान है, इन सबका मजमुआ जो है 52.5 लाख चांदी की मालियत के बराबर बन जाता है। तो वो शख्स कहीं नहीं कहलाएगा, वो जकात नहीं ले सकता। अगर तो उसके जन्म जकात की अदायगी नहीं है, ये बात याद रखिए कि जितना भी सामान चाहे जरूरत का हो या जरूरत से जाहिर हो, लेकिन मालिक इजाजत ना हो उसके ऊपर जकात नहीं आती। एक शख्स ने बहुत इम्तलाक लेकर डाले हुए इस नियत से कभी बात में जो है उनको बनाऊंगा, मैं खाऊंगा, अपने बच्चों मेरे बच्चे रहेंगे, तो वो मालिक इजाजत नहीं है और उसके लिए इस्तेमाल में भी है तो इनके ऊपर जकात नहीं है, लेकिन वो मालदार शख्स कहलाएगा। तो मुस्तहिक शख्स क्या हुआ कि जो मुसलमान हो, वह बच्चों को जकात नहीं दे सकते। इसलिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो मजू में अहलिया अहम मतरत को इलाज करा रही, कि जकात जो है मालदारों से वसूल की जाएगी, मुसलमानों के मालदारों से, अहलिया अहम मुसलमानों के मालदारों से और मुसलमानों के फकरा को दी जाएगी। तो लिहाजा इसका भी ख्याल रखना है कि जकात मुसलमान को दी जाए और वो मुसलमान हाशमी न हो और धनी न हो। और गनी की तारीफ मैंने आपके सामने कर दी कि गनी उसे कहते हैं। तो ये बुनियादी बातें हैं जो इस काम के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी और बच्चे इंशाल्लाह ताला मौलाना मुफ्ती आने वाले हैं वो ध्यान फरमाएंगे। अब मैं अपने हमारे जो सेंटर फॉर प्लान इकोनॉमिक्स है मध्यप्रदेश प्लान उसके उसके वाइस चेयरमैन हैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनके वर्कर का अपने सेंटर के बारे में साबित करें। या मालिक जो है स्थान भी इनके पहला होता है, के साथ ये मुमकिन हो गया है कि पंचायतें जो है वो स्कूल के तरह काम कर सकें। इसी तरह जिन लोगों की बचत है उन बचत से भी अगर वो सारे दिन करके तैयार करें तो ये भी मुमकिन है। आज के माहौल में जिसमें कहते हैं कि कस्टमर देखे यानी जो भी कस्टमर चाहता है तो प्रयास के बारे में करते हैं। आज अगर सारे मुसलमान खड़े हो जाए और ये इतवार करें बैंकों से कि हम बैंकों के अंदर पैसा नहीं रखेंगे अगर ये दूसरी कारोबार होगा तो मुझे ये यकीन है कि बैंक जो है आज मजबूत हो जाएंगे ऐसी प्रोसेस और ऐसी सर्विसेज देने के लिए जो बड़ा जरूरी है। क्योंकि मिसाल हमारे सामने है कि बाहर के मुल्कों में म्यूचुअल फंड है बैंक में तकरीबन मंत्री है ज्यादा से बड़े मंत्री हैं जो बैंकों में इस्लामिक फंडों कायम करेंगे। जाहिर है कि इस्लाम से उनको कोई लॉकडर फिंगर को दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये इस्लामिक फंडर इसलिए कायम की क्योंकि उनके अंदर उनको मुनाफा नजर आता है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि उन बैंकों ने हर चीज बहुत ही सही तरीके से की क्योंकि इसलिए कि अपने ग्राहकों के सामने रखें तो सामने यूज रह सकें तो आगे से सामने तरीके से आपके पैसे मैनेज करेंगे रखते हुए। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह के हुक्मों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए उतने कामयाबी है हमारे लिए और नाकामी नहीं है। तो ये इदारा जो है इसी वजह कायम किया गया है कि एक जगह ऐसी मौजूद है वहाँ हर आदमी जा सकता हो मजाक सुन सकता हो वहाँ से तैनात किए जाए। अब मैं ये बताने चला जाता हूँ कि 8,000 जितनी उसको दिलचस्पी रहेंगे सबसे ज्यादा वो बच्चा नजार बनेगा। तो इंशाल्लाह बदलाव के कारण बाद इंसानों का और फायदा यानी जो तैयारत है पैरों का उसके ऊपर लागत है तो तैयार होगा उसको इंतजार की किया जाए 8,000 से तैयार भी की जाएगी। यहाँ तक गुजारिश है कि उसमें ऐसी है अब आगे आपको प्रोग्राम करते रहे बुलाया
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تتلى بها جبابهم وجنوبهم وجنورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bukan yang
نظیر زکات نکالنے کا اہتمام کر اس غرض کے لیے میں نے ابھی روزگار کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں پر بڑی سخت جائز بیان کرنائی ہے جو اپنے مال کی کما آپ کو بھی زکات نہیں نکالتے اور بڑے سخت الفاظ میں ان سے عذاب کی پیشن گوئی کرنائی ہے. فرمایا کہ الذین یکتمون اپنی زون ذہب والفضۃ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقون في سبيل الله اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشر ہم بعذاب الیم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک بدناک عذاب کی خبر دے دیجیے. جو لوگ اپنا پیسہ اپنا روپیہ اپنا سونا چاندی جمع کر کے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس پر جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے تو ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے. لفظ یہ ہے کہ خوشخبری سنا دیجیے ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. اس دردناک عذاب کی آگے تفصیل بیان کروائی کہ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن کسی سونے چاندی کو آگ میں پکا کر اس آدمی کے پیشانی اس کے پہلو اور اس کی اس کو داغا جائے گا آگ کا انگارا بنا کر اس سونے چاندی کو آگ کا انگارا بنا کر اس کے پہلو کو اس کے پیشانی کو اس کی اس کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہاگا ماں کا رس تم یہ انجوت یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا فضوق میں باقی تم تک نہیں دور تو آج مزہ رکھو اس خزانے کا جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ ہے. یہ انجام بیان کروایا ان لوگوں کے لیے جو روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بتا لانے کی فکر نہیں ہے. اور یہ ایک آیت میں نہیں قرآن کریم نے اور بھی متعدد آیات میں ایسے لوگوں کے اوپر شدید جائز بیان کر رہے ہیں. ہم کے بارے میں ایک سورت تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے نئی ریلیجن محمد محمد الگی جمع مال وعدہ کہ دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر رہا ہے اور جن جن کر رکھ رہا ہے. ہر روز گرتا ہے کہ آج میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا ہر روز گرتا ہے کہ آج میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا اور گنتی کر کر کے خوش ہو رہا ہے. جمع مال وحدہ یحسب ان ماله اخلدہ اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ساری عمر کی زندگی عطا کر دے گا ساری ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. ہر چیز نہیں یاد رکھو کہ یہ مال جس کو دن دن کر رکھ رہا ہے اور اس کے اوپر واجبات ادا نہیں کرتا تو اس مال کی وجہ سے اس کو ایندھن والی آگ اس آگ میں جو جب آگے بنائے وہاں آگ نہ کر رہے ہوتاما تمہیں کیا پتا کہ ہوتاما کیا چیز ہوتی ہے نار اللہ وہ پتا اللہ کی سب کرے والے اصل کہ یہ آگ جس میں اس کو ڈالا جائے گا یہ ایسی آگ ہے آئی ہوئی ہے. نار اللہ اللہ کی آگ اور وہ سزا جو اللہ نے سلگائی ہے یہ کسی انسان کی سلگائی آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے جو مٹی سے بجھ جائے اور اس کو فائر بریگیڈ بجا دے. یہ اللہ جل جلالہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے اللہ کی سب کرنے والے آسودا جو انسان سے کل کو بگڑ کر جھانکتی ہوگی یعنی انسان کے کل اور بگڑ کر پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو سنا دیں جس کی شدید ظاہر بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مال تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو چاہے تجارت کے ذریعے ہو چاہے ملازمت کے ذریعے ہو چاہے کاشتکاری کے ذریعے ہو جس طرح بھی حاصل کرتے ہو ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے. تمہارے اندر طاقت تھی اپنے زور بازو سے اپنے دلچے پر تم وہ مال جمع کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے ذریعے تمہیں رزق پہنچا رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں نے دکان کھول کر بیٹھ گیا اور مال جا کر جمع کر لیا اور اس کو بیچ دیا اس واسطے مجھے پیسہ مل گیا. یہ نہ دیکھا تو دکان کھول کر بیٹھ گئے تو گاہک کس نے بھیجا تمہارے پاس. اگر دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے اور کوئی گاہک نہ آتا تو کیا کوئی بکری ہوتی کوئی آمدنی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا کہ ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری کر رہا ہے. اس کے دل میں ڈال دیا کہ تم جا کر دکان پر بیٹھ اس کے دل میں ڈال دیا کہ تم جا کر دکان والے سے خرید. میرے محمود بھائی کے اللہ تعالیٰ ان کو درجہ بلند فرمائے. ان کی لاہور میں ایک دکان تھی ابھی ہے دکان کتابوں کی دکان ہے دینی کتابوں ادارے اسلامیہ کے نام. وہ دن کہنے لگے کہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے. کہنے لگے کہ ایک دن میں صبح کو جب بیدار ہوا تو شہر میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بازار کے اندر کئی کوئی شدھ پانی کھڑا تھا. دن کا خیال یہ آیا کہ آج بارش کا دن ہے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں بازار سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے ایسے میں کون کتاب خریدنے کے لیے آئے گا؟ اور کتاب کی کوئی ایسی نہیں دینی کتاب جو ساری دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائے تو کہیں جا کے کسی کو خیال آئے کہ وہ صرف دینی کتاب بھی پڑھ جائے. نہ کوئی روٹی کھانے کا اس سے بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے نہ کوئی فوری ضرورت پوری ہوتی ہے. آج کل کے حساب سے مدد فالتو ہے کہ جب کبھی موقع مل گیا تو تھوڑا سا فالتو وقت مل گیا تو چلے گئے چلے گئے دینی کتاب. ایسے مجھے کاروباری میں کون ہوگا جو کتاب خریدنے کے لیے آئے گا؟ لہٰذا آج نہ جاؤں چھٹی کروں دن بتا رہا ہے. لیکن پھر بزرگوں کے سوگر یاد آ رہا ہے ہر سوگر چلا رہا ہے سوگر دکھائی سمانے لگے کہ میرے دل میں ساتھ ہی دوسرا خیال یہ آیا کہ ٹھیک ہے کوئی آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کا یہ راستہ مقرر فرمایا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے جا کر دکان کھول کر دکان پر بیٹھ جاؤں جہاں بیچنا میرا کام نہیں کسی اور کا کام. لہٰذا میں اپنا کام مجھے کام میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے چاہے بارش ہو رہی ہو چاہے خراب آ رہا ہو مجھے جا کر دکان کھولنے کے لیے. میں یہ سوچ کر میں چھتری اٹھائی اور پانی میں گرتا ہوا جا کر دکان پر کھول کے بیٹھ گیا. چھوٹا پھر آئے گا تو کوئی نہیں لیکن چلے بیٹھے تلاوت بھی کریں. دکان کھول کر بیٹھا اور تلاوت کے لیے قرآن کریم نکالا کہ تلاوت قرآن کریم کر دیکھا کیا کہ لوگ برساتی کا ڈال کر اور کتابیں خریدنے کے لیے آئے. میں حیران تھا کہ آخر کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ان کو اس بار مسلادار بارش میں بیٹھے ہوئے سیلاب میں میرے پاس چل کر آ رہے ہیں اور آ کر یہ ایسی کتاب خرید رہے ہیں جس کی کوئی انسانی ضرورت نہیں. تو دل میں یاد یہ آئی کہ آخر تک میں جو گاہک بھیج رہا ہے جا کر بھیل آ جاتی ہے. ان کے دل میں یہ ڈالا اور خریداروں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر ان سے خریدو اور ان کے رشتے کا سامان کرا دو. یہ اللہ جل جلالہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو وہ عطا کر رہا ہے. تو خاص تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو, دینے والا ذرا فکر اللہ ہی ہے. زراعت میں آج میں نے بیج ڈالا زمین کے اندر, اس کا کام تو یہ تھا کہ بیج میں بیج ڈال دیتا, جان لگائی ہے کہ زمین کی صفائی کر دی, اس میں پتھر نکال دیے, رکاوٹیں دور کر دی, بیج ڈال دیا. لیکن اس بیج کو پروپر بنانا, وہ بیج وہ بے حقیقت بے وزن بیج, وہ اتنی بڑی زمین کا پیٹ چھاڑ کر نمودار ہوتا ہے. وہ ایسا بیج کہ جو زندگی میں بنا ہے, جو وزن کرنا چاہو تو وزن کا کوئی پیمانہ بھی اس کے لیے موجود نہیں, اتنا بے حقیقت. لیکن اتنی بھاری زمین کا پیٹ چھاڑ کر نکلتا ہے اور کوپر بن جاتا ہے, اور وہ کوپر بھی ایسی کہ وہ بچے بھی انہیں لگا دے تو مر جائے. لیکن وہی کوپر سارے موسموں کی سختیاں برداشت کرتی ہے, اور اس کے بعد اس کوپر سے پودا بنتا ہے, پودے سے دھول نکلتے ہیں, دھول سے پھل بنتا ہے, اور اس طرح وہ بیج ساری دنیا تک پہنچتی ہے. کون ہے جو پہنچا رہا ہے؟ لہٰذا کوئی بھی ذریعہ ہو آمدنی کا, ہاں وہ تجارت ہو, جو زراعت ہو, جو ملازمت ہو, حقیقت میں انسان کو ایک محدود کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ محدود کام کر دیتا ہے, اس محدود کام کے اندر روپیہ پیسہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں. یہ اللہ جل جلالہ ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے, تمہیں عطا کرتا ہے. لہٰذا جو کچھ ہے اسی کی عطا ہے. للہ عباد السماوات و عباد الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے, اس نے تمہیں دے دیا, اس نے تمہیں عطا کر دیا. جب تمہیں عطا کر دیا اور مطلب اس طرح کر دیا کہ چلو مالک کو دے دیا. لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جانور جن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, وہ جانور جن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, وہ ان کو عطا کرتے ہیں اور وہ ان کو مالک بنا دیتے ہیں, وہ ان کے مالک بن جاتے ہیں. تو جب ہم نے مالک بنایا تمہیں, مالک حقیقی تو ہم تھے, ہم نے تمہیں مالک بنایا, تو حقیقت میں سب سے بڑا حق تو ہمارا ہے. اس مال کا جو تمہارے پاس آیا جو ہمارا ہے, وہ آتے ہیں مال اللہ الذی آتاکم. لہذا جب مال اللہ کا ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کی تکلیف ہے, اسی کی عطا ہے, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا گیا ہے وہ اس میں سے اللہ کا حکم کے مطابق کرے. اگر خرچ کرو گے تو اس کے حکم کے مطابق, تو باقی جتنا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے, صحیح ہے, وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی نعمت ہے, برکت والا ہے. اور اگر تم نے وہ چیز اس میں سے نہ نکالی جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے, تو پھر یہ سارا مال تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں, اور خیال سے تم دیکھ لو گے ان انگاروں کو, یہ انگارے تمہارے جسم اس سے آگے جائیں گے, باہر جائے گا, تو یہ ہے وہ خزانہ جس سے تم جمع کیا کرتے. اس واسطے اللہ تمہارے بتانے اپنے فرض, اگر اللہ تعالیٰ جو کرواتے کہ بھائی ہمارے عطا کوئی چیز ہے, لہذا اس وجہ سے 2.5% تم رکھو اور 97% خرچ کرو, چاہے اس کا حق تھا, تو اس کی عطا کی ہوئی اس کی ملکیت کی. لیکن اس کے اپنے بندے کا یہ فرض فرمایا کہ جانتا ہوں کہ تم کر دے, جانتا ہوں کہ تمہیں کسی کی حاجت ہے, جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعتیں اس کی طرف راغب ہیں, لہذا چلو اس میں سے 97% تمہارا صرف 2.5% کا مطالبہ ہے, یہ 2.5% اللہ کے راستے پہ خرچ کر دو, یہ 2.5% اللہ کے راستے پہ خرچ کر دو, تو باقی 97% تمہارے لیے حلال ہے, صحیح ہے, برکت والا ہے. اتنا معمولی بتائی بات لگائے ہیں گھر کے, اور سارا بال ہمارے والے گھر میں جو اس کے حصہ ہو اپنے حالات میں, یہ ہے زکات. بھائی اور جو وہ زکات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم ہے ہر جگہ واقعی سلا وہاں سے زکا واقعی سلا وہاں سے زکا جہاں نماز کر سکے ساتھ ہی زکات لگی ہوئی تو ہمارے زکات اکثر نماز قائم کرو زکات ادا کرو اسی طرح بھی رائے ہوئی جب اس کی تعبیر ہے تو پھر اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے جلال العلوم نے اتنا بڑا احسان فرمایا اتنا بڑا غرض فرمایا کہ ہمیں مال عطا کیا مالک بنایا اور مطالبہ پھر گھر جی سکتا تو اتنا کام مسلمان کرے کہ وہ بھائی دوسرا کی چیز اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے یہ کام اگر کر لے تو کوئی آسمان میں ڈوب جائے گا تو قیامت نہیں ڈوب جائے گی ہوتا یہ ہے کہ بیٹھ کے لوگ تو زکات سے بے پرواہی میں الحمد للہ نکالتے ہی نہیں بھائی کی تکلیف ہوگی جو آ رہا ہے وہ آئے بات ہے الحمد للہ زکات کا کچھ نہ کچھ احساس ہے لیکن احساس ہونے کے باوجود نکالنے کے باوجود جو صحیح طریقہ ہے نکالنے کا وہ اختیار نہیں کرتے جب ڈھائی فیصد کم کیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر زکات نکالی جائے لوگ بابا کا جو کرتے چلو کون اس بجٹ میں پڑے حساب لگائے کتاب لگائے کتاب پیکنگ کرے اور یہ کرے وہ کرے لہٰذا ایک اندازے سے الگ تک جو سمجھ میں آیا نکالیے اب اس اندازے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کمی بھی ہو سکتی ہے اگر زیادہ ہو جائے تو ان شاء اللہ معاوضہ نہیں ہوگا لیکن کمی بڑھ جائے ایک روپیہ بھی زکات کا کم ہو جائے ایک روپیہ بھی کم ہو جائے یعنی جو زکات واجب تھی اس کے ایک روپیہ کم دیتی تو یاد رکھو کہ وہ ایک روپیہ جو تم نے اپنے پاس روک لیا حرام طریقے سے تمہارے پاس رہ گیا تو تمہارے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکات شامل ہو جائے جوان کا کام چالو کرے تھے تو پوری زکات نہیں نکالی تھوڑی سی زکات نکالی ہے تھوڑی سی رہ گئی اپنے اس مال میں کو استعمال کے لیے رکھا ہوا اس میں زکات جس مکان مال میں شامل ہو جائے وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے پورا پورا تو اس وقت استعمال کرنا ہے کہ پورا ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکات نکالی جائے اس کے بغیر زکات کا فریضہ سما حاصل اگر نہیں ہوتا الحمد للہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو لائی کی ضرور ہے لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کہ ٹھیک ٹھیک حساب کر کے نکالے اس کی وجہ سے بابا صاحب مال کر کر زکات کھڑی رہ جاتی ہے اور اس کو اشارہ سے بدل جاتی ہے ویسے زکات نکالنے سے چاہیے اس نیت سے اللہ کے نظر آنے کا حکم ہے اس کی رضا کا تقاضا ہے ایک عبادت ہے اس سے کوئی خرچات حاصل ہو کے نہ ہو کوئی فائدہ ملے کے نہ ملے لیکن جب اللہ کے حکم کی بات بڑا تو خود مقبول ہے اپنے کام کے لیے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکات نکالتا ہے تو اس کو فوائد بھی ادا کرنا کیا فوائد کا ہونا چاہیے فرائضیا کا فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے فرائے کئی میں آتا ہے اللہ کو اللہ اور ربا یہ یوز کس میں آتا کہ اللہ تعالیٰ ربا کو سود کو تو مٹاتے ہیں اور صدقات کو یعنی زکات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ زکات نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے یہ دعا کرواتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے مسلم کر फिर से करते हैं क्योंकि माँ आता तो मुझे माल कोई सदाता क्योंकि माल को कदम नहीं करता कभी नहीं करता क्या मतलब बाबा पास से इसका प्रसाद यह होता है कि अगर आपने जकात निकाली वह लगाने से आमदनी को दूसरे ग्राहक जगह कर दिए उससे ज्यादा पैसा आ गया बाबा पास गिनती में चाहे ज्यादा ना आए गिनती के तरह से चाहे कमी हो गई हो लेकिन बरकत अल्लाह तला ने बताया की तरफ से उस माल में ऐसी होती है कि उस बरकत की वजह से थोड़े माल से ज्यादा फायदे दिया आज की दुनिया गिनती की दुनिया है लेकिन बरकत जिस चीज को कहते हैं वो ये है कि थोड़ी सी चीज में ज्यादा फायदा हासिल हो जाए आज आपने पैसे को बहुत कमा लिए लेकिन घर पैसे कमा लूंगा तो बड़ा बीमार है या तो जाकर एक ही उसकी राय ले ले सारे के सारे जो पैसे आए थे खर्च हो जाए तो वो बरकत न होगी आज आपने बहुत कमाया कल बार आपने मैं डॉक्टर मिल गया और फिर बिस्तर दिखा के माल की लिया वैसे तो आए बरकत न होगी या आपने खाना मंगवाया एक ही उस खाने के नतीजे में बस हजमी हो गई ये सब दो बरकतियां हैं और बरकत यह है कि कैसे तुम चाहे कमाए लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें यह इंतजाम कर दिया कि थोड़े ही पैसों में ज्यादा काम मिलकर ज्यादा काम निकल गए इस तरह से बरकत है तो ये बरकत अल्लाह तुम्हारे ताला का फरमान है उसको तो अल्लाह के आसान का बरकत है लिहाजा भाई ये जरूरी है कि हम जकात निकाले इस तरह निकाले जिस तरह अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और उसके मुताबिक लाभ के साथ निकालिए अब उसकी तकलीफ थोड़ी सी है जानना पड़ा जो तारक है जकात का एक मिसाल पकड़ दिया कि इससे कम अगर मालिक है आदमी को उसके ऊपर जकात नहीं उतने का मालिक होगा तो जकात होगी और वो हर मुसलमान जाता है साढ़े बावन सौ का भी या उसकी कीमत का नकद रुपया या केवल वह सामान्य तिजारत द्वारा मौजूद हो तो उसको कहते हैं कि ये चाहिए निशान ये कहे निशान और निशान के बारे में साथ में ये शर्त लगा दी कि इस निशान के ऊपर साल गुजरना चाहिए एक साल तक आदमी फायदे निभाव रहे तो उसके ऊपर सरकार लागू होती है लेकिन यहां गलतफहमी आमतौर से लोगों ने यह है कि वो ये समझते हैं कि हर हर रुपए का मुस्तकिल साल गुजरे सब उसके ऊपर जकात लागू होती है ऐसा नहीं बल्कि जब एक मरतबा साल के शुरू में कल से वो साल शुरू हो रहा है यकूब रमजान को तो यकूब रमजान को अगर कोई सब चाहे का मिसाल है इस साल और आएंगे साल जब जितना बता आएगा तो उस वक्त भी कायदे निशान है तो उसको कायदे निशान समझ जाए साल भर और हर हर रुपए के ऊपर साल गुजरता जरूरी बीच के बरत में आती रही जाती रही उनका कोई हिसाब नहीं अगले साल जब जितना बता आएगा उस वक्त देख लो क्या रकम तुम्हारे पास मौजूद उस वक्त जो रकम मौजूद है इसके ऊपर जकात निकाली जाएगी चाहे उसमें से बाद रकम एक दिन पहले ही आ जाए एक लाख रुपया अगले साल जब यकूब रमजान आने से दो दिन पहले उसके पास 50,000 रुपया आ रहा था और अगले साल जब यकूब रमजान आई तो उसकी मजबूरी रकम जो है वो 1.5 लाख रुपए अब 1.5 लाख में पूरी 1.5 लाख पर जकात आज ही कर रहे हैं ये हिसाब पूछ लिया जाएगा फिर शुरू में तो 1 लाख की और 50,000 कल आई है लिहाजा इसके ऊपर साल में गुजरा भी 50,000 से नहीं गई बल्कि आज जितनी है साल के खत्म होने के दिन जो तारीख तकवीर है जकात की वैल्यूएशन डेट है उस तारीख में जितना माल मौजूद है उसके ऊपर जकात लागू है वो चाहे कुछ लोग साल में माल में कम है वो ज्यादा है 1 लाख की ये पूरा बाजार तो पिछले साल आज 1.5 लाख हो गई 1.5 लाख से ज्यादा करो तुम्हें साल 1 लाख की और अब 50,000 हो गई 50,000 का डाल बीच में तो खर्च हो गई उस बात कोई हिसाब से डाल नहीं उसके ऊपर जकात निकालने की जरूरत नहीं आज इस दस्तावेज में जो बैलेंस है उस बैलेंस के ऊपर बताने वाली अल्लाह ताला ने हिसाब किताब की इज्जत को बचाने के लिए ये आसान तरीका मुकर्रर फरमा दिया। चलो दूसरे को खाया पिया तुम्हारे तुमने या कोई और काम किया उसके लिए तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसी तरह अगर एक दिन पहले आ गई तो उसके अलग हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं, उस कारण से जो है उसकी बता बता यह है साल को रखने का मतलब। उसको बता नहीं दिख रहा उसमें बता क्यों निकाले तो खुद समझ लो हर हाथ हो जाएगा अलग साल गुजरने की जरूरत नहीं बल्कि आखिर में जो गलत आ जाए उसके बदल आ जाए ये सब लगाकर अलग अलग सजाए खाया जाएगा। अब अल्लाह ताला का यह मतलब है कि उसमें हर चीज पर जकात आयोग नहीं करना है। माल तो बहुत कुछ होता है बहुत कुछ कितना होती है लेकिन बहुत से माल ऐसे हैं कि उनका जकात लगाने आए हैं जकात दूसरी अगर आए हैं वो सबसे पहले नंबर एक नकद रुपया वो चाहे शकल में भी हो वो नोट हो वो शिक्षा हो या सोना चांदी की शकल में हो तो नकद रुपया और सोना चांदी वो चाहे ज्वेलर की शकल बात जगह के टाइम में क्या जाता है कि साथ जो ज्वेलर जवानी ज्वेलर है खातून का उसके ऊपर बाजार में रहता है सरकार नहीं लेकिन उसमें सही बात हनफी मतलब है यह है कि उसके ऊपर जकात वाजिब जिसके वाली ज्वेलर के ऊपर और अलबत्ता जो सोने चांदी का ज्वेलर है उसका जकात है लेकिन अगर सोने चांदी के अलावा किसी और भाप का ज्वेलर है चाहे वो प्लैटिनम ज्वेलर लेकिन उसके ऊपर जकात नहीं सूर्य जवाहरात है उनके ऊपर जकात नहीं जब तक कि वो तजारत की है जाके का इस्तेमाल के लिए है तो उसके ऊपर जकात सोने चांदी का यहां एक बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे जकात एक इजाजत है अल्लाह तबारक व तआला का आयत किया हुआ फरीजा है तो बाद लोग इसमें अपनी अकल की अपील चलाते हैं इसको हथियार इसको छोड़ेंगे खराब हथियार खराब छोड़ेंगे जो याद रखे कि यह इबादत है और इबादत जो माने ही है जो बात समझ में आए या ना आए उसका हुक्म मानना है देखो कि क्या साहब सोने पर तो जकात है और हीरे जवाहरात पर नहीं है क्यों नहीं है या सोने पर जकात है और प्लैटिनम पर क्यों नहीं है तो ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये कहे कि साहब यहां मैं मुसाफिर हूं और मुसाफिर की दो रकतें होती है जहर के अंदर चार सौ रुपया दो हो जाती है तो नौकरी पर क्यों आती नहीं होती या जैसा कि कहे कि साहब सफर की हालत में एक आदमी जाता है हवाई जहाज के सब प्यार से बैठकर तो उसको रुपये बचत कर रहे हूँ और उसकी दो रकतें हो गई और मैं तो कराची में बस में सफर करता हूँ तो हजार घंटा ज्यादा मुसाफर होती है तो मेरी कोई उद्देश्य नहीं होती ये तो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए अहकाम है इबादत के उसको ये कहा कि साहब ये क्या इबादत है हज जो है वो दस दिन ईसाई को होता है मुझे तो आशा नहीं है कि मैं आज जाकर हज करा मैं आज जाकर अरफात में तीन दिन मुस्लिम हो जाऊंगा ऐसे हो जाए तो एक